रात अब गहरी होती जा रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं, बस कहीं-कहीं स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी फैल रही थी। अदिति की कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन कार की रफ्तार से ज्यादा खतरनाक उसकी हालत थी। अदिति की आंखें आधी-आधी खुल रही थीं। नशे का असर अभी भी पूरी तरह उतरा नहीं था। उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन उसका संतुलन बार-बार बिगड़ रहा था। कार कभी दाईं तरफ झूलती, कभी बाईं तरफ। सामने से एक ट्रक आया तो उसकी तेज हेडलाइट सीधे अदिति की आंखों पर पड़ी। अदिति ने आंखें सिकोड़ ली। उफ, उसने स्टीयरिंग थोड़ा ज्यादा घुमा दिया। कार अचानक सड़क के किनारे की तरफ झटका खाकर गई। टायर ने जोर से चीख मारी, चर्र। अदिति ने जल्दी से स्टीयरिंग संभाला। कार फिर सड़क के बीच में आ गई। उसका सिर भारी था और दिल की धड़कन तेज। उसने खुद से बुदबुदाया, घर, बस घर पहुंचना है। उसकी यादों में बार बार वही सीन घूम रहा था, आर्यन का चेहरा, सबके सामने उसका उसे रोक देना, वो शब्द। उसने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा, क्यों किया मैंने ये सब। कार फिर हल्की सी लहराई। सड़क पर दूर तक सन्नाटा था, लेकिन खतरा हर पल उसके साथ चल रहा था। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में एक साधारण सा घर, आंगन में हल्की रोशनी जल रही थी। घर के अंदर का माहौल शांत था, लेकिन अचानक वो शांति टूट गई। कमरे के अंदर मोहन सिंह बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी उम्र करीब 55 साल के आसपास थी। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। तभी उन्हें अचानक तेज खांसी आने लगी। खांसी इतनी तेज थी कि उनका पूरा शरीर हिलने लगा। सावित्री तुरंत घबराकर उनके पास आई। अरे क्या हुआ जी? उसने जल्दी से पानी का ग्लास उठाया और उन्हें सहारा देकर बैठाने लगी। मोहन सिंह मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। दवाई, उन्होंने हांफते हुए कहा। सावित्री तुरंत अलमारी की तरफ गई। उसने जल्दी जल्दी दवाई का डिब्बा खोला, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। डिब्बा खाली था। हे भगवान, उसने घबरा कर कहा, दवाई तो खत्म हो गई। उधर मोहन सिंह की खांसी और तेज हो गई। खा खा खा, उनकी सांसें तेज चलने लगी। सावित्री की घबराहट बढ़ने लगी। अरे अब क्या करूं? तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और शामली अंदर आई। वो शायद अभी अभी अपने कमरे से बाहर आई थी। माँ क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। सावित्री तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। बेटा तेरे पापा की दवाई खत्म हो गई है। मोहन सिंह अब भी खांस रहे थे। शामली तुरंत उनके पास आ गई। पापा धीरे, उसने उनका कंधा सहारा दिया। फिर उसने माँ की तरफ देखा। दवाई कहाँ से मिलती है? सावित्री बोली, कोने वाली मेडिकल स्टोर से, वही जो चौक पर है। शामली बिना एक सेकंड गवाए खड़ी हो गई। मैं अभी लेकर आती हूँ, सावित्री ने थोड़ा घबरा कर कहा। लेकिन बेटा रात बहुत हो गई है, शामली ने तुरंत कहा। कोई बात नहीं माँ, 5 मिनट में आ जाऊंगी। उसने जल्दी से चप्पल पहनी। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने पीछे मुड़कर कहा, आप पापा का ध्यान रखना। सावित्री बस चिंता भरी नजरों से उसे देखती रह गई। कुछ ही सेकंड बाद घर के बाहर स्कूटी स्टार्ट होने की आवाज आई। शामली ने स्कूटी स्टार्ट की। उसने एक बार घर की तरफ देखा, फिर एक्सेलरेटर घुमा दिया। स्कूटी सड़क पर निकल पड़ी। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। सड़क लगभग खाली थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसकी स्कूटी आगे बढ़ती जा रही थी। उसे बस एक ही चिंता थी, पापा की दवाई। और उसी समय कुछ किलोमीटर दूर अदिति की कार अब भी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं। स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। सामने सड़क हल्की सी घूमती हुई जा रही थी, लेकिन नशे की वजह से अदिति को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने आंखें झपकाईं। फोकस अदिति, उसने खुद से कहा। लेकिन अगले ही पल उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर ढीली पड़ गई। कार अचानक दाईं तरफ मुड़ी। सड़क के किनारे खड़ा एक लोहे का बैरिकेड तेजी से पास आने लगा। अदिति ने घबराकर स्टीयरिंग मोड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम, कार जोरदार आवाज के साथ बैरिकेड से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह दब गया। एयरबैग अचानक खुल गया। अदिति का सिर झटका खाकर सीट से टकराया। कुछ सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। सड़क पर बस कार का इंजन हल्का सा धुआं छोड़ रहा था। हेडलाइट अब भी जल रही थी, लेकिन कार के अंदर अदिति बेहोश पड़ी थी। उसके माथे से हल्का खून बहने लगा। रात की सड़क फिर से सन्नाटे में डूब गई। उसी समय कुछ मिनट बाद शामली की स्कूटी उसी सड़क पर आगे बढ़ रही थी। वो जल्दी में थी। अचानक उसकी नज़र दूर सड़क किनारे खड़ी एक टेढ़ी सी कार पर पड़ी। हेडलाइट अजीब सी दिशा में चमक रही थी और कार के सामने बैरिकेड मुड़ा हुआ था। शामली ने तुरंत स्कूटी धीमी कर दी। ये क्या? वो थोड़ा और करीब आई। अब उसे साफ दिख गया, एक एक्सीडेंट हुआ था। उसका दिल धड़क उठा। वो तुरंत स्कूटी रोककर नीचे उतरी। धीरे धीरे कार के पास पहुंची। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह टूटा हुआ था। उसने घबरा कर अंदर झांका और अगले ही पल उसके मुंह से आवाज निकली, ओह गॉड। अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी थी, वो अदिति थी। शामली ने तुरंत कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। पहले दरवाजा नहीं खुला, उसने जोर लगाया, क्लिक, दरवाजा खुल गया। अदिति का सिर एक तरफ झुका हुआ था, माथे पर खून लगा हुआ था। श्यामली घबरा गई। हेलो, सुनिए, सुन रही हैं आप? उसने हल्के से अदिति के गाल थपथपाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। श्यामली ने तुरंत चारों तरफ देखा, सड़क पूरी तरह खाली थी। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और एम्बुलेंस नंबर डायल किया। हेलो, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है मेन रोड पर, प्लीज जल्दी भेजिए। फोन रखने के बाद वो फिर अदिति की तरफ झुकी। प्लीज होश में आइए। कुछ मिनट बाद दूर से सायरन की आवाज सुनाई देने लगी, पी पो पी पो। एम्बुलेंस तेजी से वहां पहुंची। दो वार्ड बॉय जल्दी से स्ट्रेचर लेकर उतरे। क्या हुआ? श्यामली ने जल्दी से कहा। कार एक्सीडेंट, ये अंदर बेहोश थी। उन्होंने तुरंत अदिति को सावधानी से कार से बाहर निकाला और स्ट्रेचर पर लिटा दिया। श्यामली भी उनके साथ एम्बुलेंस तक गई। दरवाजा बंद हुआ। एम्बुलेंस तेजी से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ी। सायरन रात के सन्नाटे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। श्यामली स्ट्रेचर के पास खड़ी अदिति को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि ये लड़की कौन है, लेकिन उस पल वो बस यही चाहती थी
कि ये लड़की बच जाए। और कुछ ही मिनटों बाद एम्बुलेंस शहर के हॉस्पिटल के गेट के अंदर दाखिल हो गई। दरवाजे खुलते ही डॉक्टर और नर्सें स्ट्रेचर लेकर अंदर भागी। कॉरिडोर में अफरा-तफरी मच गई और उसी तनाव भरे पल में रात की भागदौड़ और घबराहट के बीच श्यामली ने एक पल के लिए भी उस लड़की का चेहरा ठीक से नहीं देखा। अदिति का चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था और उसके बाल भी बुरी तरह बिखरे हुए थे। इसी वजह से श्यामली उसे पहचान ही नहीं पाई कि वो असल में कौन है। उसके लिए उस समय वो बस एक अनजान घायल लड़की थी जिसकी जान बचाना सबसे जरूरी था।